யம் பிரம்மா வருணேந்திர ருத்ர மருத ஸ்தந்தி திவ்யேஸ்தவே வேதைஷாங்க பத க்ரமோபநிஷதே காயந்தி யம சாமகா தியானாவஸ்தி தத்கதேன மனசா பஷ்யந்தி யம் யோகினோ யஷாந்தன்ன விதுசுராசுரிகணா தேவாய தஸ்மே நம நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவி சரஸ்வதி வியாசம் தத்தோ ஜயமுதீரே இந்திரியாணாம் அதிஷ்டாத்ரி பூதானாம் சாகிலேஷு யா பூதேஷு சததம் தஸ்யை வ்யாப்தி தேவ்யே நமோ நம வ்யாப்தி தேவ்யே நமோ நம ஓம் பத்ரம் நோ அபி வாதய மனஃ ஓம் சாந்தி 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 ஓம் ஸ்ரீமன்நாராயண நாராயண நாராயண ஸ்ரீமன்நாராயண பஜ்மன்நாராயண நாராயண நாராயண பஜ்மன்நாராயண சப் ஜக நாராயண 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 சப் ஜக நாராயண ஸ்ரீமன்நாராயண நாராயண நாராயண பஜ்மன்நாராயண நாராயண நாராயண பஜ்மன்நாராயண ஸ்ரீமன்நாராயண நாராயண நாராயண ஸ்ரீமன்நாராயண நாராயண நாராயண ஸ்ரீமன்நாராயண நாராயண நாராயண ஸ்ரீமன்நாராயண போலியே சச்சிதானந்த பகவான் கீ ஜெய். கல் ஹம் விசார் கர் ரஹே தே ஈஷாவாசி பரிஷத் கே த்வாரா 14वें मंत्र को लेकर संभूति च विनाशाय च यदस दोयम भयम सह विनाशेन मृत्युर्त्रिवा संभूत्या मृतम नु पश्चिते। जो व्यक्ति जो संभूति रूप इस कार्य और कारण रूप संभूति असंभूति को साथ साथ जानते हैं, कार्य और उपासना के इस स्वरूप को समझने वाले, वह प्रकृति से अमृतत्व की प्राप्ति कर लेते हैं, अर्थात कारण और कार्य को दोनों को अपने से भिन्न पहचान कर अभिन्न आत्मस्वरूप में स्थिति को प्राप्त करते हैं। कार्य कारण के साथ कल विचार करते हुए श्रुति आगे 15वें मंत्र में हमें बहुत सुंदर उपदेश करती हैं। हृणयेन पात्रेण यस्यास्य पिहितं मुखम् हृणयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् தத்துவம் பூஷணா பாவ்ருணு சத்ய தர்மாய திரஷ்டே। हृणयेन पात्रेण सत्यस्य विहितं मुखम्। अर्थात ब्रह्म का मुख, सत्य का मुख हिरण्यमय पात्र से ढका हुआ है। इस हिरण्यमय पात्र, हिरण माने स्वर्ण, स्वर्ण के समान आदित्य मंडल में ब्रह्म का जो मोह है वह ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। हिरण्यमय, हिरण्य में चमक है, प्रकाश है, रोशनी है और इसके ढक्कन से ढका हुआ है। यह जो हिरण्यमय पात्र है, इस हिरण्यमय पात्र को के ऊपर ढक्कन है और ये ढक्कन हटे तो वह तत्व रूपी सत्य धर्माय दृष्टये, मैं उस सत्य धर्म को, जो सत्य धर्म है, सत्य ही धर्म है, उस धर्म का, सत्य का मैं दर्शन कर सकूं, उस पात्र को जो ढका हुआ है हिरण से, स्वर्ण से, उस पात्र को आप हटा दीजिए, ऐसा भगवान ईश्वर के साथ प्रार्थना है। मैं सत्य धर्म आत्मा को प्राप्त कर सकूं, सत्य धर्म आत्मा, सत्य क्या है, धर्म क्या है, बोले सत्य और धर्म तो आत्मा ही है। इस मंत्र के द्वारा पूर्व मंत्र से जो कर्म और उपासना, उपासना में मैंने कल आपको बताया था कि उपासना के माध्यम से जो हमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं, देवो उपासना करें, उपासना करते करते जीवन में उपासक के सिद्धियां आ जाती हैं, सिद्धियां प्राप्त नहीं की जाती हैं, सिद्धियां आ जाती हैं। और उन सिद्धियों के आने पर, इसीलिए संत कहते हैं ना, हम अमुक महात्मा बड़ा चमत्कारी है, याद रखना, संत चमत्कार करते नहीं है, चमत्कार दिखाते नहीं है, चमत्कार हो जाते हैं। संतों के जीवन में चमत्कार हो जाते हैं, वो दिखाते नहीं, वो करते नहीं, हो जाते हैं। बोले उनके जीवन में सहज रूप से, उपासक के जीवन में उपासना करते हुए जब सत्य और मार्ग ईश्वर की आराधना करता है तो सात्विक उपासना करते करते उसके जीवन में यह अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, सिद्धि, प्रकाम्य, अष्ट सिद्धियां उसके जीवन में आ जाती है। और यह जो सिद्धियां हैं, ये सिद्धियां ही क्या हैं? बोले ये इनकी जो चमक है, इसी को कहा गया हिरण्यमय पात्र। और दूसरा इसका और भाव है कि जो संस्कार जिसके अंदर चिद रूपी संस्कार है और बुद्धि रूपी संस्कार है, बुद्धि से, मन से, चित्त से जो संस्कार ग्रहण करने का पात्र है, जिसमें संस्कार इकट्ठे होते हैं, बोले वो पात्र कैसा है? वो हिरण्यमय है, स्वर्णमय है। संस्कार जिसके अंदर रहते हैं, जैसे कहा जाता है सिंहनी का दूध केवल सोने के ही पात्र में टिकता है, अन्य किसी पात्र में टिकता नहीं है। सिंहनी के दूध को रखने के लिए पहले तो सोचो कि सिंहनी का दूध निकालना ही कितना कठिन है, कितना मुश्किल है, और उसके बाद कदाचित वो दूध निकाल भी लिया गया, दूह भी लिया गया, तो उसके लिए रखना किस क्या चाहिए? बोले सोने का पात्र चाहिए। उसी तरह से हमारे अंदर जो संस्कारों को जिस पात्र के अंदर, जिस पात्र से रस पिया जाता है, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह पात्र जहां कर्म का स्वाद आता है, उपासना का स्वाद आता है, उपासना का रस मिलता है, कर्म का रस मिलता है, वो रस को पीने का जो पात्र है, अर्थात जो संस्कारों को इकट्ठा करने का पात्र है, वो कैसा है? बोले हिरण्यमय है, उसकी बड़ी चमक है। और जब तक ये पात्र का मुख ढका रहेगा, इस पर ढक्कन रहेगा, तब तक इसके अंदर जो सत्य धर्म है उसका दर्शन नहीं हो सकता। अर्थात जब तक हम कर्म का रस भोग लेते रहेंगे, उपासना का रस लेते रहेंगे, तब तक हमें उस सत्य तत्व का धर्म का दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए उपनिषद कहती है कि उसको हटाने के लिए हम स्वयं अपने प्रयास से, अपनी कोशिश से इस ढक्कन को, इस पात्र को खोल सकें, जो ढका हुआ है उसका ढक्कन उघाड़ सकें, ये ताकत हमारे में नहीं, हम स्वयं नहीं कर सकते, स्वयं नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे समय पर गुरु से, इष्ट से वह पूछा, अर्थात जो तत्व रूप, पूषा शब्द से अभिप्राय है जो पोषण करने वाला है, जो पुष्ट करने वाला है, वह परमात्मा जो ज्योतिर्मय है, उस परमात्मा से प्रार्थना है कि हे ईश्वर, आप कृपा करें, दया करें। उन्हीं से हम प्रार्थना करते हैं कि इस पात्र का आप ढक्कन खोलने की हमें ताकत दिए, ढक्कन खुले तो हम इसमें सत्य धर्म का दर्शन कर सके। अर्थात इस चित्त के अंदर इस संस्कार जिसे हम कहते हैं, जिसमें कर्म और उपासना का संस्कार भरा हुआ है इस पात्र के अंदर, इसीलिए कहा कि एक जन्म का नहीं भाई, न जाने कितने जन्मों के कितने सारे कर्म हुए। ऐसा प्रसंग आता है कि धृष्टराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, मैंने कभी कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिसके कारण मैंने इस जन्म में, तो कभी कोई ऐसा कर्म नहीं किया मेरी याद में जिससे मेरे 100 पुत्र मारे गए, और इतना बड़ा दुख, अंधेपन का दुख और उसमें 100 पुत्र मारे जाने का दुख जो मुझे प्राप्त हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम कितने जन्म जानते हो? बोले प्रभु, मैं अपने पिछले 100 जन्म तक देख सकता। भगवान ने कहा तुम अपने पिछले जन्मों में दृष्टि डालो, तो मैं अपने पिछले जो बीत चुके हुए हैं उन 100 जन्म तक मेरी दृष्टि पहुंचती है, मैं वहां तक देख सकता हूं, क्योंकि जो बाहर नहीं देख सकता उसकी अंतर्दृष्टि बढ़ जाती है। इसलिए कहा कि मैं अपनी दृष्टि के सामर्थ्य से इतना लंबा देख सकता हूं, परंतु मुझे कहीं कोई ऐसा कर्म नहीं दिखता कि जिसके कारण मुझे इतना भारी दुख मिला हो। भगवान ने कहा बस इससे पीछे 101 के पहले क्या थे तुम? बोले तब उस समय में एक बहेलिया था, और ये बहेलिया क्या करता है कि जंगल में पक्षियों को जाल में फंसाता है, जाल डालता है। इसने क्या किया कि स्वतंत्र रूप से वृक्ष में बैठे हुए जो पक्षी थे, उन पक्षियों को जाल में डालने के लिए उसने गरम जाल डाला, तो उसे गरम जाल में डाल करके पक्षी फड़फड़ाए और उस गर्मी से उनकी आंख खत्म हो गई, तो इसके कारण उनके श्राप से तुम्हें अंधापन मिला, और इस जाल में फड़फड़ाती हुई बहुत सारे पक्षी समाप्त हो गए, जिसके कारण तुम्हें अपने पुत्र के समाप्त होने का ये दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है। तो कहने का अर्थ था कितने जन्म पहले जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं, वो किस में भरे हुए हैं? बोले हमारे अंदर भरे हुए हैं, और इन संस्कारों से निकलने वाला समय समय पर जो संस्कारों से निकलता है, संस्कार ही हमारे सामने आकर खड़े होते हैं, उसका फल हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार समष्टि में जो संस्कारों का पात्र है, इस पात्र से वह सत्य धर्म हमें दर्शन नहीं दे पा रहा है। इसलिए कहा भगवान से, हिरण्येन पात्रेण सत्यस्य विहितं मुखम्। सत्य का मोह ढका हुआ है इन संस्कारों से। ये संस्कार हटे, जिसे हम कहते हैं पूर्व प्रतिबंधक, अर्थात जो पहले के पूर्वाग्रह हैं, जो पहले से हमने पकड़ा हुआ है। क्या पकड़ा हुआ है? बोले हमने पकड़ा हुआ है, मैं दो तरह का सत्य, एक तो है व्यवहारिक सत्य, जिसे हम कहते हैं प्रतिभाषित व्यवहारिक सत्य। ये जगत, ये शरीर, ये इंद्रियां, ये सब जिसे हम बरत रहे हैं, ये है एक हमारा व्यवहारिक सत्य। और एक है, इस व्यवहारिक सत्य को कहते हैं, जिसे हम ध्यास कहते हैं, और एक अध्यारोपित, जो हमारे ऊपर आरोपित कर दिए गए। जैसे उदाहरण के लिए, ध्यास, मैं शरीर हूं ऐसा अपने को शरीर मानना, ये एक जन्म से नहीं, कई जन्मों के कारण मैं शरीर हूं, मैं प्राण हूं, मैं इंद्रिय हूं, मैं बुद्धि, मैं जो बुद्धि है, और इस मैं बुद्धि से हम जो मैं बुद्धि से मैं अपने को जीव समझ रहा हूं, देह समझ रहा हूं, ये जो समझ है, ये हमारी एक जन्म से नहीं, कई जन्मों से होने के कारण इसका नाम है ध्यास। और दूसरा, जैसे जैसे बड़े हुए तो अध्यारोपित, हम पर आरोपित कर दिया गया, थोप दिया गया, बता दिया गया, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम वैश्य हो, तुम क्षत्रिय हो, और तुम ब्रह्मचारी हो, तुम गृहस्थाश्रम हो, और तुम सन्यासी हो। कोई आदमी सन्यासी बन गया तो वो बोलेगा, पहले मैं गृहस्थ था, अब मैं सन्यासी हूँ। वो अब मैंने आरोपित कर दिया क्या। इस प्रकार का जो ये ध्यास से युक्त सत्य है, व्यवहारिक सत्य है, और जो परम सत्य है, जहाँ ये सब कुछ नहीं है, वह परम सत्य। सत्य क्या है? बोले आत्मा है। और सत्य क्या है? धर्म है। सत्य धर्माय, जहाँ ये कुछ नहीं है, वो सत्य धर्म आत्मस्वरूप, उसका दर्शन करने के लिए जन्म जन्मांतर के जो संस्कार चित्त के अंदर इकट्ठा है, ये संस्कारों का जो समूह है, वो कैसे हटे, कैसे इससे हम पार हो सके, ये हमसे, हमारी ताकत से नहीं, उसके लिए अपने इष्ट से, गुरु से प्रार्थना करो कि मेरा पोषण हो सके, मैं उसका दर्शन कर सकूं। इसको नग्न निरावरण सत्य को, जो सत्य आवरण से युक्त है, वो सत्य है मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। और जो निरावरण सत्य है, जिसमें किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं है, ऐसा जो स्वस्वरूप है, उसके दर्शन करने के लिए, उस सत्य को समझने के लिए, वो सत्य किसके द्वारा समझ में आएगा? बोल परमात्मा के द्वारा, जो सकल सृष्टि का पोषण करने वाला है। इसलिए उस पोषणकर्ता को ईश्वर कहा गया। पूषा पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये, मैं उस सत्य का दर्शन कर सकूं। अच्छा, इसमें जो हिरण्यमय पात्र है माने संस्कार है, इस संस्कार में क्या है, संस्कार में हमारा सत से सद्भाव है, सत के कारण हमारे हृदय चित्त में सद्भाव है और सद्भाव में किसी न किसी प्रकार की आकृति है, रूप है, हमारे सद्भाव का कोई रूप है और चित्त भाव से हमारे इस हृणमय पात्र माने संस्कारों में बुद्धि का बीज है और बुद्धि बीज में, बुद्धि में ही मूर्खता है, जड़ता है, विद्वत्ता है, प्रतिभा है, ये प्रतिभा का भाव है, ये सब किसमें है। हम कहते हैं ना अमुक बड़ा ही बुद्धिमान है और किसी को कहते ये बड़ा मूर्ख है और ये बड़ा प्रतिभावान है, तो ये अंतर किससे मालूम पड़ रहा है, ये प्रतिभावान है, ये बुद्धिमान है, ये मूर्ख है, मूर्खता का, बुद्धिमानता का, प्रतिभावानता का पहचानने का जो संस्कार है वो किसके अंदर में है, बोले हमारे चित्त के अंदर में है। और ये संस्कारों का जो पात्र है जिसमें ये संस्कार इकट्ठा है वो कौन सी चीज है, बोले उसी का नाम तो अंतःकरण है, उसी को हम अंतःकरण कहते हैं। और अंतःकरण कैसा है, बोले ये स्वर्णमय के समान चमकदार है, प्रतिभावान है, प्रकाश है अंतःकरण में, और उस अंतःकरण के अंदर प्रकाश है, ऐसा अंतःकरण और जिसके अंदर चित भाव से बुद्धि है और आनंद भाव से, आनंद का भी इसके प्रियत्व है, प्रियपन अहम का बीज इसी अंतःकरण के अंदर है नारायण, तो इसलिए अहम के बीज से राग और द्वेष उत्पन्न होता है और प्रियत्व के भाव से जो अच्छा लगता है उसे हम ग्रहण करना चाहते हैं, जो बुरा लगता है उसे हम छोड़ना चाहते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मात्सर्य आदि जो विकार हैं, ये सारे के सारे विकार किसमें हैं, बोले अंतःकरण रूपी पात्र के अंदर है। अंतःकरण रूपी पात्र जो हिरणमय है, सोने के समान प्रकाशमान है, इस अंतःकरण का नाम ही हिरण्य पात्र उपनिषद कहती है, सोने का पात्र कहती है। अंतःकरण रूपी पात्र के अंदर चित भाव से बुद्धि है और आनंद के भाव से प्रियता और अहम बीज इसके अंदर विद्यमान है और सद्भाव से, सत के उससे सद्भाव से हमारे अंदर आकृति है, यानी कि जैसे बीज से वृक्ष उत्पन्न होने से पहले वृक्ष का जो रूप है वो किसके अंदर था, बोले इस छोटे से बीज के अंदर तो वृक्ष छुपा ही हुआ था। मान लो कोई मूर्तिकार एक बड़ी सुंदर मूर्ति को बनाता है, बोले उस मूर्ति को बनाने से पहले वो मूर्ति कहाँ थी, वो मूर्तिकार के अंतःकरण में थी, अंदर थी, और उसने अपने अंतःस्थित उस मूर्ति को ही धीरे धीरे चित्रकारी के रूप में उजागर किया, सामने किया। कवित्व कवि एक सुंदर कल्पना का लेखन करता है, पर लेखन करने से पहले वो कविता का जो भाव है, जो कविता का वो बनाने रचना करता है, उससे पहले वो कहाँ थी, बोले उसी के अंतःकरण के अंदर थी। तो कहने का अर्थ ये है कि इस अंतःकरण में इतना कुछ भरा हुआ है, इतना कुछ भरा हुआ है, और ये सब अंतःकरण के अंदर जो चीजें भरी हुई हैं, जिसके कारण हमें उस सत्य का दर्शन नहीं हो रहा है, बोले इस सत्य के दर्शन करने के लिए जब तक ये अंतःकरण रूपी पात्र का ढक्कन नहीं हटेगा, माने इसके आवरण भंग नहीं होंगे, ये अंतःकरण शून्य नहीं होगा, अंतःकरण रिक्त नहीं होगा, खाली नहीं होगा। इसीलिए हम सरल शब्दों में कहते हैं, भैया अपने अंदर इतना कुछ भर दिया गया है कि हमें उस परमात्मा का दर्शन ही नहीं हो पा रहा है। इतना कुछ हमने इस अंतर, इसलिए संत कहते हैं और कुछ मत करो, अपने को खाली करना शुरू करो, खाली करो। इस पर एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि एक बार दो कलाकार हैं जो बहुत सुंदर मूर्तियां बनाते हैं और दोनों मूर्ति अपनी अपनी बना करके राजा के पास ले गए और राजा से कहा कि महाराज आप हमें इन दोनों मूर्तियों में, हम दोनों में से किसने मूर्ति सुंदर बनाई उसके लिए आप हमें पारितोषिक दीजिए, इनाम दीजिए। राजा ने जब मूर्ति देखी पहली तो कहा वह क्या सुंदर है, और दूसरी देखी तो फिर बोला कि वह क्या सुंदर है। अब इन दोनों में कौन सुंदर है ये निर्णय करना ही बड़ा कठिन। राजा ने कहा देखो इन मूर्तियों से तो तुम दोनों में किसकी सुंदर है ये निर्णय करना कठिन हो रहा है, इसलिए तुम एक काम करो फिर से मूर्ति बनाओ। मूर्ति ऐसे उनके लिए कहा कि तुम्हें एक कक्ष दिया जाएगा, उस कक्ष के अंदर तुम्हें जो सामान चाहिए वो सामान तुम लेकर के जाओ और मूर्ति 15 दिन के अंदर जिसकी सुंदर होगी उसको इनाम दिया जाएगा, पारितोषिक दिया जाएगा, उसका सम्मान होगा। जब ये दोनों व्यक्तियों ने सुना तो दोनों मूर्ति बनाने को तैयार हुए और एक कमरा है और कमरे के बीचों बीच पर्दा है, एक इस दीवार में, सामने की दीवार में, एक पिछली दीवार में मूर्ति बनाने का काम दोनों को मिला। सामने जो मूर्ति बना रहा था वो जब अंदर जाता है तो अपने साथ ब्रश भी लेता है, रंग भी लेता है, पेंसिल भी लेता है, जो कुछ भी उसे उपकरण चाहिए, साधन चाहिए, सामग्री चाहिए, वो सब लेकर के अंदर जाता है और मूर्ति बनाता है और परिश्रम करते करते पसीने से भीग करके वो बाहर चला आता है। परंतु ठीक उसी के साथ दूसरा मूर्तिकार भी अंदर जाता है और साथ में अंदर जाता है, साथ में उसी तरह से पसीने से भीगा हुआ बाहर चला आता है और इस प्रकार वो अपने साथ कुछ नहीं ले जाता। 15 समय समाप्त हुआ। राजा मन में विचार करते हैं कि देखो इन दोनों इतना बड़ा कलाकार है परंतु ये साथ कुछ भीतर अपने ले नहीं, अब तक इसने मेरे से न रबड़ मांगी, न पेंसिल मांगी, न रंग मांगा, न ब्रश मांगा, कोई चीज इसने नहीं ली और खाली अंदर जाता है, खाली बाहर लौट आता है। ये तो क्या कर रहा होगा, समय पूरा हुआ, जो कलाकार अपने साथ साधन सामग्री लेकर जाता था, प्रथम जब राजा ने उसकी पेंटिंग देखी, चित्रकारी देखी तो राजा इतने खुश हुए, वाह कहकर उन्होंने कहा क्या सुंदर, क्या खूब, क्या खूब, प्रशंसा करते हुए जैसे बाहर निकलना चाहते, इतने में दूसरे कलाकार ने कहा महाराज मेरी भी तो देखिए। मन में आश्चर्य लगा, इसने कुछ लिया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, तो ये क्या दिखाना चाहता है। जैसे उसने पर्दा हटाया उसकी दीवार इतनी साफ थी कि सामने की मूर्ति ज्यों की त्यों उसकी दीवार पर प्रतिबिंबित ऐसी दिखाई हो रही थी कि ये सच है या ये सच है, ये निर्णय करना मुश्किल था। उसने कुछ नहीं किया, उसने केवल अपनी दीवार को साफ किया, उसने जो उसमें छपा हुआ था उस दीवार को इतनी अच्छी तरह से साफ किया, वो दीवार चमक उठी और उसकी चमक में ये सामने की मूर्ति ज्यों की त्यों उस पर दिखाई पड़ने लगी। तो कहने का अर्थ मेरा ये था कि हमें जीवन में अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए, अध्यात्म में कोई आदमी ये कहे कि मुझे तो ऐसा करना है, मुझे तो ऐसा बनना है, अध्यात्म में कुछ करना नहीं है। करना तो किस में है? कर्मोपासना में है। कर्मोपासना में क्या करना है? बोले कर्म करते हुए उपासना के लिए अपने मन, अपने अंदर ज्ञान, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, जिसके लिए हम कहते हैं श्रवण मनन निध्यासन, ये जो साधन है जिसके लिए कहा गया कि विवेक हो, वैराग्य हो, सम दम तितिक्षा उप्रति श्रद्धा समाधान हो, जिसे हट हम सच संपत्ति कहते हैं, श्रवण हो, मनन हो, नितिध्यासन हो, इस श्रवण मनन नितिध्यासन के द्वारा, इन सत साधनों के द्वारा हमें क्या करना है? बोले ये अंतःकरण के अंदर जो संस्कारों का समूह जमा हो रखा है, जिसके कारण ये हिरणमय पात्रेण माने इस चमक से, जो संस्कारों की इस चमक से हमें उस सत्य का दर्शन नहीं हो पा रहा है। जैसे बॉस ये चमत्कार एक और सरल शब्द से समझे कि उदाहरण के लिए कोई आदमी बहुत धनवान होता है ना, तो लोग उसे कुछ करने के लिए कह देते हैं, देखो ये तो बहुत बुद्धिमान है, विद्वान है, बहुत ज्ञानी है, तो ये जो प्रशंसा उसकी हो रही है धनवान व्यक्ति की, यह तो बुद्धिमान है, बहुत गुणवान है, बहुत विद्वान है, बहुत ज्ञानी है, ये जो मूर्ख लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो वो किसके कारण कर रहे हैं? उसके धन के कारण, उसकी चमक के कारण। तो इसी तरह से ये जो प्रशंसा हो रही है, जो उसकी महिमा मंडित हम उसे कर रहे हैं, बोले किसके कारण कर रहे हैं? तो ये हिरणमय पात्रेण हो गया, यही चमक उस सत्य को ढक देती, सत्य का दर्शन नहीं करने देती। अंतःकरण के अंदर जो चमक है, बोले किसकी? यह सब चीजों की जो चमक है, जिसके कारण हम सत्य का दर्शन नहीं कर पा रहे, ढका हुआ है, तो इसलिए भगवान से प्रार्थना की कि हमारा अंतःकरण स्वच्छ हो, अंतःकरण निर्मल हो। बोले वो उसकी स्वच्छता किसमें है? उसकी स्वच्छता है विवेक से, वैराग्य से। इसलिए तत्व ज्ञान के लिए, तत्व ज्ञान के लिए अधिकारी की आवश्यकता होनी चाहिए। बिना अधिकारी के तत्वानुबोध नहीं होता, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं होती, ऐसी जो श्रुतियां कहती है। ब्रह्म विद्या के लिए हमें साधन संपन्नता की आवश्यकता पड़ती है। बोले साधन संपन्नता क्या है? ये यही साधन संपन्नता है कि विवेक हो, वैराग्य हो, षट संपत्ति जिसे हम कहते हैं, सम दम, इंद्रियों का समन संयम हो, मन का निग्रह हो, मन का दमन हो, श्रद्धा हो, और बुद्धि में समाधान हो, चित्त में समाधान हो। इस प्रकार जब ये षट संपत्ति के साथ हम मुमुक्षा, जिसके अंदर तीव्र सत्य को प्राप्त करने की जिज्ञासा है, जिसे कहते हैं मुमुक्षा, छूटने की प्रबल इच्छा, ऐसी मुमुक्षा के साथ वह श्रवण करता है, मनन करता है, नितिध्यासन करता है, इन साधनों से वो अंतःकरण रूपी पात्र को मांजता है, स्वच्छ करता है, माने ढक्कन उठाता है, उसके ढक्कन को जो ढका हुआ है वो ढक्कन इन साधनों से खुलता है। और ये साधन हम कर सकें, ये साधन हमको प्राप्त हो, और उसके लिए भगवान से ईश्वर से प्रार्थना है। हिरणमय पात्रेण सत्यस्य पिहितम मुख, मैं उस सत्य के मुख का पान कर सकूं, अर्थात सत्य धर्माय दृष्टये, मैं सत्य धर्म को, जो सत्य है वही धर्म है, जो धर्म है वही सत्य है। सत्य धर्म क्या है? बोले सत्य धर्म यहाँ जो धर्म है ये कोई सांप्रदायिक धर्म नहीं है, ये वर्णाश्रम धर्म नहीं है, ये लोक धर्म नहीं है, ये इंद्रिय धर्म नहीं है, ये जाति धर्म नहीं है, ये गुण धर्म नहीं है। ये जो धर्म है, बोले ये धर्म क्या है? बोले ये आत्मा, आत्मा ही धर्म है। और ये धर्म के आत्मा क्या है? बोले सत्य है। और सत्य क्या है? धर्म है। सत्य धर्म स्वरूप क्या है? बोले आत्मा है। इसलिए इस आत्मा का मैं दर्शन कर सकूं, आत्मदर्शन साक्षात्कार, मैं उस सत्य के साथ, मेरी वृत्ति उस मैं के जो मेरे अंदर अहम वृत्ति है, वह अहम वृत्ति का साक्षात्कार सत्य के साथ हो जाए, सत्य के साथ मिल जाए, सत्य के साथ सत्य का दर्शन कर सके। उपनिषद में बृद्धारण्य में एक मंत्र आत्मा आता है, आत्मा रे दृष्टवा, आत्मा का दर्शन करो। यह मनुष्य शरीर हमें किस लिए मिला है? बोले आत्म दर्शन के लिए। अब बात थोड़ी सी विचार करने की है कि बोले आत्मा का दर्शन करो, दर्शन जिसका हम करते हैं और दर्शन जो करता है, दर्शन करने वाला और जिसका दर्शन करते हैं, वह दो होते हैं, एक नहीं होता। और यहां कहा एक अद्वितीय, एक मेवा अद्वितीयम, वो अद्वितीय है, सत्य तो दो नहीं होते, आत्मा तो एक है। जब आत्मा एक है तो तब दर्शन, यदि आत्मा का दर्शन करोगे तो आत्मा अलग होगी और तुम आत्मा को देखने वाले अलग होगे, दो हो जाएंगे। तब ये कैसे बात हो सकती है? ये बात कैसे है? इस ये श्रुति कैसे उपदेश करती? इस बात को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ता है? ये समझना पड़ता है कि हमारी जो दर्शन करने की दृष्टि है, वो दृष्टि उस तत्व के साथ ऐसे मिल जाए कि दृष्टि ही विलीन हो जाए। एक छोटा सा उदाहरण, गंगा के समुद्र के तट पर एक बालक बैठा है और गंभीरता से विचार कर रहा है, उदास सा बालक बैठा हुआ। उधर से एक संत निकल रहे थे, उस उदास बालक को देखकर उससे पूछा कि बेटा तुम उदास यहां पर बैठे हुए क्या सोच रहे हो? उसने कहा कि मैं ये सोच रहा हूं, मैं सोच के तो ये आया था कि समुद्र के पास जाऊंगा और समुद्र को अपने कटोरे में लेकर आऊंगा, पर यहां आकर मैं देख रहा हूं कि इतना अगाध समुद्र, इतना बड़ा समुद्र, इसे कटोरे में कैसे अपने साथ ले चलूं? जिस समुद्र का ओर और छोर पता नहीं चल रहा है, उस समुद्र को मैं अपने छोटे से कटोरे में कैसे ला सकता हूं, इसे कैसे अपने साथ ले जा सकता हूं? तो महात्मा ने समझाया कि ठीक है, तुम ये समुद्र बहुत अनंत है, विशाल है, इसका ओर छोर पता नहीं है, इतना बड़ा समुद्र कटोरे में नहीं लाया जा सकता है, नहीं कटोरे में आ सकता है, ये नहीं हो सकता। बालक चुप थोड़ी देर सोचता रहा और थोड़ी देर बाद मौन होकर के उसने अपने हाथ का कटोरा लिया और समुद्र में डाल दिया। जैसे कटोरा समुद्र में डाल दिया तो महात्मा ने उससे पूछा कि बेटा ये क्या किया तुमने? बस महाराज, मैंने वही किया जो आपने मुझे समझाया। आपने मुझे यही समझाया कि अनंत और असीम को किसी सीमा के अंदर लाकर बांधा नहीं जा सकता। असीम के साथ अनंत और असीम को किसी सीमा के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता, सीमा के भीतर नहीं बांधा जा सकता, परंतु अपनी सीमा को तोड़ करके अनंत और असीम के साथ मिला तो जा सकता है। यदि कटोरे में समुद्र नहीं आ सकता है तो कटोरा तो समुद्र में जा सकता है। बस जो अपनी दृष्टि, जो हमारी एक सीमा है, वृत्ति की एक सीमा, उस वृत्ति को हमने अनंत के साथ, अनंत में उस वृत्ति को जैसे ही अनंत के साथ मिलाया तो अनंत में वो परिणत हो गई, अनंत बन गई, अर्थात असीम बन गई, और उस अनंत के साथ मिली हुई वृत्ति अपने आत्म स्वरूप को अनंत भाव से देखती, अनंत रूप से देखती है। जहां तक दृष्टि जाती है वहां तक आत्मा के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा अनंत का, व्यापक का जो दर्शन है वही आत्मदर्शन है नारायण। तो अपनी वृत्ति को तो उसमें हम मिला सकते हैं ना। उसी तरह से यहां अंतःकरण के अंदर से वो हमारी वृत्ति, जिस वृत्ति को ढका हुआ है, प्रलोभनों ने ढका हुआ है, कभी राग और द्वेष ने आकर के ढक लिया, कभी प्रियता और अहंता ने ढक लिया, कभी जड़ता ने ढक लिया, और कभी सद्भाव की आकृतियों ने आकर के ढक लिया उस वृत्ति को। कभी इसके ऊपर सद्भाव आ गए, कभी इसके अंदर जड़ता आ गई, और कभी इसके अंदर प्रियत्व हो गया, राग आ गया, और जब राग आया तो द्वेष को दूर फेंकना चाह, अलग करना चाह, दूर करना चाह। जब द्वेष आया तो उस द्वेष से हमने उसे मिटाना चाहा। इस प्रकार जो ये राग द्वेष आदि आ गए इस अंतःकरण के अंदर, तो वह जो वृत्ति थी, जो वृत्ति को उसके साथ, अनंत के साथ मिलना चाहिए थी, वो सीमाओं के अंदर बंध गई, और सीमा के अंदर बंध करके वो अपने को वैसा ही जो उस पर आरोपित कर दिया गया उसी को मान करके उसी के साथ रहने लगे। इसलिए प्रार्थना की गई, उस परमात्मा से प्रार्थना की गई, क्या उस परमात्मा से ये प्रार्थना कही, अशतो मां सदगमय तमशो मां ज्योतिर्गमय। हे परमेश्वर, मैं उस ज्योतिर्मय प्रकाश को प्राप्त कर सकूं, वो आत्म स्वरूप, सत्य स्वरूप धर्म को प्राप्त कर सको, धर्म का दर्शन कर सको, सत्य का दर्शन कर सको। इसलिए अशतो मां सदगमय तमशो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से मैं प्रकाश को प्राप्त हूं, मृत्यु से अमृत को प्राप्त हूं। अशतो मां सदगमय, असत्य से मैं सत्य को प्राप्त हूं, अंधकार से मैं प्रकाश को प्राप्त हूं। ये लाखों लाखों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने परमात्मा से प्रार्थना की, असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर मां अमृतम गमय, मैं मृत्यु से अमृत की प्राप्ति कर सकूं। यही प्रार्थना ईशावास्य उपनिषद के मंत्र के द्वारा ऋषि कर रहे हैं। हिरणमय पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखं तत्त्वं पूष्णा प्रपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये, उस सत्य का, उस अनंत का, उस असीम का, उस अपार का मैं दर्शन कर सकूं। मेरी जो वृत्ति से चित्त के अंदर, मेरी जो वृत्ति जो संस्कार समूह के अंदर, संस्कार समूह के अंदर है, वो संस्कार समूह के अंदर रहने वाली वृत्ति को मैं उसका, उस वृत्ति का साक्षात्कार कर मैं अनंत के साथ, सत्य के साथ दर्शन कर सकूं। इसलिए हे प्रभु आप मुझ पर ऐसी कृपा करें। हे जगत के पोषण करता पूषा, आप रोज शांति पाठ में भी प्रार्थना करते हैं, पूषा माने पोषण, पुष्ट करने वाले, माँ बच्चे का पोषण करती है, पिता पोषता है, वो पोषण करने वाला है, अर्थात जो जगत का पोषण कर रहा है, सकल सृष्टि का पोषण कर रहा है, पालन कर रहा है, जिस जो जगत का पालन करता है, ईश्वर जो जगत का शासन करता है, उस शासनकर्ता से, उस पालनकर्ता से, उस जगत नियंता से मेरी प्रार्थना है, मेरी एक ही प्रार्थना है कि मैं सत्य का, आत्मा का दर्शन कर सकूं, आत्म साक्षात का, उसी से प्रार्थना करूं। उसी के आगे मैं कहती हूं गिड़गिड़ाओ, रो, प्रार्थना में बहुत बड़ा बल है। जो प्रार्थना हृदय से की जाती है वो प्रार्थना कभी बेकार नहीं होती। नारायण भगवान परमात्मा सुनते हैं, बोले इसीलिए जो अंतःकरण की भीतर की पुकार होती है ना, भीतर से जो छटपटाहट बनकर प्रार्थना, भीतर की छटपटाहट जो प्रार्थना बनकर निकलती है वो भगवान अवश्य सुनते हैं। और उस प्रार्थना में एक पुकार है, पुकार मैं हमेशा कहा करती हूं यह तो परीक्षा का प्रवेश पत्र है, उसी को परीक्षा के लिए बैठने को मिलेगा जिसने प्रवेश पत्र भरा हुआ हो। जिसने प्रवेश पत्र ही नहीं भरा तो उसे परीक्षा में बैठने को ही कैसे दिया जाएगा। तो इसी तरह से जिसके अंदर पुकार नहीं है, इसलिए खूब पुकारो, निर्लज्ज भाव से भक्ति के मार्ग में भी, भक्त के लिए भगवान कहते हैं मद गायंती, मेरे नाम को गाते हैं निर्लज्ज भाव से, उन्हें मेरा नाम लेने में कभी लज्जा नहीं आती, कभी संकोच नहीं होता, कोई सुन न ले ऐसा नहीं होता, वो निर्लज्ज होकर के गायंती गाता है। जब भाव आता है तो वो गाता है, जब भाव आता है तो वो नाचता है, जब भाव आता है तो वो रोता है, जब भाव आता है तो वो हंसता है। ये सब उसकी क्रिया कैसी होती है, भाव की तरंग से तरंगित होकर, भाव के साथ ओतप्रोत होकर उसकी ये सारी क्रियाएं होती है। तो उसी प्रकार ज्ञान में भी आपने उपासना की, आपने साधन किया, विचार किया, वैराग्य विवेक का साधन, वैराग्य तीव्रतर वैराग्य, भीतर बड़ा गहरा वैराग्य है, ऐसा वैराग्य नहीं जिसे संसारिक वैराग्य कहते हैं, भीतर से तीव्र वैराग्य भी है, श्रद्धा भी है, श्रद्धा के बिना भी बात नहीं, चित्त में इंद्रियों के अंदर सम भी है, दम भी है, श्रद्धा भी है, तितिक्षा भी है, उपरति है, उपरामता है, संसार से बड़ा उपराम मन है, कहीं मन को रस नहीं मिलता। जैसे भौरा फूलों के अंदर मटराता है, परंतु एक फूल से दूसरे फूल में वो तो शहद मधु के लिए लेने के लिए चलता है, उसी तरह से जिसका मन संसार रूप के अंदर भ्रमण करते हुए कहीं भी उसका मन ठहरता नहीं, अच्छा नहीं लगता उसे, और उसको तो आनंद मिलता है, सुख मिलता है, चैन मिलता है, तो केवल परमात्मा का जहाँ स्मरण होता है, जहाँ चिंतन होता है, जहाँ सत्य की चर्चा होती है, वहीं उसके मन को चैन मिलता है, विश्राम मिलता है। नारायण ऐसी जिसके अंदर तीव्र उप्रांता हो, परंतु ईमानदारी से विचार करो तो आनंद यहाँ ज्यादा आता है या जब संसार के रूप रंग राग आदि की चर्चा होती है तो हमें वहां आनंद मिलता है। प्रवचन में, सत्संग में 5 मिनट अधिक हो गए तो हमारी आंख घड़ी में जाती है और पिक्चर देखते हुए कितना समय, 3 घंटा निकल जाता है, घड़ी की ओर कोई ध्यान नहीं जाता। संसार के राग रंग में हमें बड़ा रस आता है, परंतु तो जहां ऐसी स्थिति है वहां उपरामता कहां है? मन उपराम हुआ नहीं, तितिक्षा सहन करने की कुछ अपने अंदर द्वंद्वों को सहन करने की क्षमता नहीं है और भीतर में कोई समाधान नहीं है, संशय भरे हुए। मन की सम्यक अवस्था समाधान की स्थिति है और मन शांत है, ऐसी स्थिति में जब बात बनते और तीव्रतर संसार से छूटने की जिज्ञासा भी है, मुमुक्षा भी है, छटपटाहट भी है, जब बात नहीं बनती अपने आप से, तो ऐसे समय पर फिर अपने भीतर से एक पुकार निकलती है, एक प्रार्थना निकलती है और उस प्रार्थना को परमात्मा जो सर्वव्यापी परमेश्वर है ना, जो सत्य है, उस सत्य को आपके सामने सहज होने के लिए वो उसको विवश कर देती है। उस सत्य में वो जब आपकी पुकार पहुंचती है, क्योंकि शब्द नित्य है, शब्द सत्य है, शब्द ब्रह्म है, शब्द से परमात्मा अलग नहीं है, इसलिए उस शब्द, वो जो शब्द है, वाक्य है, उस सत्य के साथ मिलकर आपको साक्षात्कार कराने के लिए, सत्य का दर्शन कराने के लिए, सत्य में आपकी वृत्ति बनती है और इसके लिए प्रार्थना आवश्यक है। नारायण, हमारे वेद हमें प्रार्थना बताते हैं, तो आज से भगवान से प्रार्थना करो, खूब गहरे हृदय से प्रार्थना करो, तभी ये अंतःकरण का जो आकर्षण है, आपके भीतर जो संस्कारों का आकर्षण है, ये संसार को खींचता है और यही आकर्षण हमें उपासना में ले जाता है, कर्म में ले जाता है। परंतु कर्मो उपासना से जो कुछ भी आपको उपलब्ध होने वाला है, वह आपका स्वरूप नहीं है, याद रखना, वह आपका स्वरूप नहीं है। आपका स्वरूप तो कर्म उपासना से परे परम आनंद का है, वो आनंद के को ही अध्यात्म आत्मज्ञान कहा गया है, तत्व ज्ञान कहा गया है। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देती हूँ। हरिओम तत्सत।